शांति, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बहुत भाई बहन बिल्कुल नए भी हैं इसमें, तो उनके लिए हम दो मिनट में केवल इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि मुरली कैसे सुने, है ना। हर एक की कोशिश होती है, हर एक ये चाहता है कि मैं मुरली ध्यान से सुनूं और मुरली हमें याद रहे, लेकिन देखने में आता है कि मुरली की बहुत सारी पॉइंट्स मिस हो जाती हैं। तो बाबा ने बताया है कि मुरली कैसे सुने। अव्यक्त बाप दादा ने बताया था मुरली कैसे सुने, कि जब भी मुरली सुनते हैं, जब भी मुरली सुनते हैं तो क्या करें, उसे रियलाइज करें, है ना। जैसे आज भी कहते हैं, आज भी देखते हैं कि कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु होती है, मोबाइल भी कहीं रख के भूल जाएंगे, चश्मा भी कहीं रख के भूल जाएंगे, पेन कहीं भी रख देंगे, क्यों भूल जाती है। तो जब हम कोई भी चीज पर अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कोई भी काम ध्यान से करना, ध्यान से करना अर्थात देखते हुए देखना कोई भी चीज को, जैसे आप पेन रख रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, देखते हुए रख रहे हैं, आप रख रहे हैं टेबल पर और देखते हुए रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने तो रख दिया, ऐसा नहीं, देखते हुए अगर रखेंगे तो अगर बाय द वे आप भूल भी जाते हैं ना तो आपको याद आएगा कि मैंने ऐसे रखा था, चश्मा है या मोबाइल है, कुछ भी आप रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कैसे रख दें, जरूर उसको देखते हुए रखना है। तो इस तरह से देखते हैं कि जब हम देखते हुए रखते हैं या ध्यान से कोई कार्य करते हैं तो उसके मिस होने की बहुत कम चांसेस है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि जब हम मुरली भी सुनते हैं तो मुरली को क्या करें, रियलाइज करें, रियलाइज करें अर्थात क्या करें, उसे देखें, दिखाई दे, जो हम मुरली सुन रहे हैं ना वो हमारे सामने दिखाई दे, केवल शब्द नहीं, केवल शब्द सुनते हैं ना, केवल शब्द सुन रहे हैं तो मिस जाएगी, भूल जाएगी। लेकिन यदि हम मुरली जो हम सुन रहे हैं उसे देख रहे हैं, जैसे बाबा ने मान लो मुरली में कहा सोमनाथ, सोमनाथ कहते ही आप सोमनाथ का मंदिर आपको दिखने लगा, हम मान लो किसी शहर का भी नाम लेते हैं बाबा, जैसे बाबा कहते हैं कि मैसूर बहुत ही रमणीक प्लेस है, रमणीक स्थान है, तो ये मैसूर केवल शब्द नहीं है ना, तो ये याद रहेगा दिन भर आपको, आप सुनेंगे हाँ मैसूर रमणीक स्थान है, क्योंकि वो सिटी याद आ गया, दिखाई देने तो मुरली में और सब बातें भूल जाएंगी भले, लेकिन ये याद रहेगा कि बाबा ने इस शहर का नाम लिया था, क्यों, क्योंकि वो हमारे सामने दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए जब हम मुरली सुने, जो भी सुनते हैं उसे देखते रहें या रियलाइज करें, इसी को बाबा कहते हैं कई बार कि एक तो रिवाइज करो और दूसरा रियलाइज। और जाहिर सी बात है कि आप सारी मुरली 100% याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर अभ्यास कर सकते हैं और एक दो पॉइंट लेकर के पूरे दिन में उसको हमें यूज करना है, सुबह से लेकर शाम तक, तो हम व्यर्थ से भी बच जाएंगे। और बाबा ने कहा कि जो आपने अपना बनाया, जिस पर आपने चिंतन किया, जिस पर विचार सागर मंथन किया, वही ज्ञान आपका होता है। ऐसे ज्ञान तो बहुत है, सब जगह है, मुरलियां हैं, लेकिन हमने कितना अभ्यास किया, यदि हमने अभ्यास नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो जस्ट वो जैसे पॉइंट्स हैं। तो इसलिए हम जब मुरली सुने तो पूरे दिन में उसका अभ्यास करें। तो जैसे कि बाबा ने आज कहा कि 21 जन्म के लिए, है ना, क्या बनना है, पुण्यात्मा। 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बनना है, क्यों और कैसे बनते हैं और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, एक बात तो ये है। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, पुण्य किसे कहते हैं मालूम है ना सबको, जैसे दान और पुण्य दो शब्द है ना, दान अर्थात हमारी दिल में जो भी आए, जो भी इच्छा हुई हमने दे दिया किसी को, अच्छा ये ले लो आपको दे रहा हूं कुछ भी, ये हो गया दान। लेकिन किसी को आवश्यक है, किसी को मान लो ठंड लग रही है, आपने उनको गर्म कपड़े दे दिए, किसी को भूख लगी है आपने भोजन करा दिया, तो ये आवश्यकता के अनुसार जब हम कुछ करते हैं इसे कहते हैं पुण्य। तो सबसे बड़ा पुण्य इस समय होता है संगम युग पर, कैसे इसी समय का पुण्य, इसी समय के पुण्य के आधार पर 21 जन्म का पुण्य जमा हो जाता है। इस समय हम केवल पुण्य करते हैं और 21 जन्म का पुण्य जमा हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या हो गया, एक तो ये हो गया कि सभी आत्माओं की डिमांड क्या है, आवश्यकता क्या है, हर एक आत्मा क्या चाहती है, सुकून, कोई भी हो हर एक लाइफ में थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा चैन मिले, थोड़ा शांति मिले, हालांकि एक दो पल के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो एक तो है ये आत्माओं की डिमांड, तो अगर हम किसी को शांति देते हैं, सुकून देते हैं, तो ये भी पुण्य जमा होता है, ये पुण्य है। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पुण्य है कि इस समय किसकी आवश्यकता हम पूरी करते हैं, किसकी आवश्यकता, बाबा की। सबसे बड़ी आवश्यकता किसकी है, बाबा की। क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, बाबा ने कहा ना कि बाबा आए हैं या आते हैं तो क्या करते हैं, सुख धाम की स्थापना करते हैं, सुख की स्थापना करते हैं, सुख के राज्य की स्थापना करते हैं, जहां हर एक सुखी होंगे। तो बाबा जब आकर के ये सुखधाम रचते हैं, तो इस सुखधाम की रचना में या बनाने में हम बाबा को जो भी सहयोग करते हैं, यही सबसे बड़ा क्या हो जाता है, पुण्य है। इसकी रचना कैसे होती है, कैसे हम सहयोग करेंगे, कैसे सुखधाम की रचना होगी, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है पवित्रता ना। पवित्रता के आधार पर ही सुखधाम की स्थापना होती है, और पवित्र हम जितना बनते हैं उतना हमारा भविष्य में जमा भी होता है और पिछला माइनस भी हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि आपको बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहकर क्या करना है, जो पिछले कर्म है, हिसाब किताब है, उसे क्या करना है, भस्म कर देना है, जला देना है। तो कैसे, जैसे मान लो कोई है और अपने घर से अपने गांव से कहीं दूर जा रहा है, और किसी को पता चलता है कि अभी जाने वाले हैं 20-25 साल बाद आएंगे, तो लोग क्या करेंगे, किसी ने भी कुछ उनको दिया है ना, तो जाके लेंगे ना वापस, भाई हमारा वो लौटा दो, हमारा दे दो, ले लेंगे ना सभी। तो इसी प्रकार जब हम भी आगे बढ़ते हैं, तो हमने जो भी आश्री संस्कार, आश्री अवगुण, जो भी हमने रावण के ले लिए हैं, देह के धर्म के हमने ले लिए हैं, उसे हमें क्या करना है, उसे चुक्त करना है, वो रावण को दे देना है। कैसे देंगे रावण को, कैसे चुक्त करेंगे, कैसे जलाएंगे, उसको यूज नहीं करना ही, आश्रित संस्कारों को यूज नहीं करना। जैसे मान लो आपको कोई बहुत सुनाता है 4 लाइन 6 लाइन और सुना देता है, तो क्या कहेंगे, अभी रहने भी देंगे, अभी और कितना सुनाना है, ये जो हमने बोला ये कौन सा संस्कार आ गया, हम सुनने को भी तैयार नहीं, क्यों, ये आश्रित संस्कार, ये रावण, तो ये हमें दे देना। बाबा इसी को कहते हैं, क्या करना है, इसको भस्म कर देना है, जला देना है जो भी आश्रित संस्कार है। लेकिन ये कैसे खत्म होंगे, बाबा की याद में रहने से। और इसीलिए बाबा ने कहा कि जब बाबा की याद में रहेंगे तो ही हमारा क्या होगा, भविष्य जमा होगा, भविष्य के लिए कमाई जमा होगी, दैवी गुण आते जाएंगे हमारे अंदर। तो इसके लिए भी बाबा ने कहा, आज मुरली की शुरुआत में सबसे पहले बाबा ने कहा क्या करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा आते ही हैं अंतर्मुखी बनाने, क्योंकि अंतर्मुखी अर्थात जनरली दुनिया में क्या कहते हैं, अंतर्मुखी अर्थात चुपचाप रहना केवल, लेकिन यहां बाबा ने क्या बताया, अपने को आत्मिक स्वरूप में आत्मा समझना। जो ही हम आत्मा समझते हैं क्या हो जाता है, साइलेंस, शांति, जिसमें जाने की हम कोशिश करते हैं, वाणी से परे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो ही आत्मा समझते हैं वाणी से परे हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि वाणी से परे भी जाना है तो क्या करो, एक तो बाबा को याद करो, बाप की याद में रहो, दूसरा क्या करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो कैसे बाबा को याद करें, कैसे स्वदर्शन चक्र फिराएं, तो हर एक कोशिश करता है कि हम बाबा को याद करें, बीज रूप अवस्था में बैठ जाएं, लेकिन थोड़ी देर बैठते हैं और फिर बुद्धि कहीं और, क्यों? तो बाबा ने बताया एक बार कि जब आप एक बिंदु को याद करते हो तो योग टूट जाता है, लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब परम धाम में देखते हैं तो एक बिंदु नहीं, कितना बिंदु, दो बिंदु देखना है, परम धाम में दो बिंदु हमेशा देखें। और दोनों बिंदु कैसे, आपस में कई बार साकार वाणी में बाबा कहते हैं कि बिंदु बिंदु से चिपक जाओ। तो बाबा से हम चिपक जाएं तो देखें दो बिंदु हैं परम धाम में, एक बाबा और एक मैं। तो देखिए इसे समय, देखिए परम धाम में दो बिंदु, एक बाबा और एक मैं, हम चिपक गई बाबा से। तो इस स्थिति में, इस अभ्यास में आप बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, बीज रूप अवस्था में भी। दूसरा बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र फिराओ अर्थात जो अपना स्वरूप है, पांचों स्वरूप, किसी भी एक स्वरूप का देखना। जैसे मान लो आप फील करते हैं कि मैं देवी हूं या मैं देवता हूं, तो जैसे मान लो मैं देवी हूं तो कैसा देखेंगे अपने को, अपना ऊपर देखेंगे, लाइट का क्राउन, लाइट के आभूषण, हमारे एक एक अंग चमक रहे हैं, जैसे आभूषण चमक रहे हैं, मेरे वस्त्र चमक रहे हैं, मेरा अंग अंग चमक रहा है, लाइट ही लाइट। इस देवी के स्वरूप में खुद को देखना, इस देवता के स्वरूप में खुद को देखना। या आप कभी बैठ गए दो मिनट पांच मिनट और आप अपने को फरिश्ता रूप में देख रहे हैं, एंजल रूप में, लाइट का स्वरूप, मेरा सिर भी लाइट का, मेरा एक एक अंग लाइट का, ऊपर से नीचे देखते रहिए। तो ये है स्वदर्शन चक्र फिराना, ऐसे एक एक स्वरूप में केवल रिपीट नहीं करना, केवल चिंतन नहीं करना, उसमें खोना, उसको रियलाइज करना, उस स्वरूप में बैठ गए उसको रियलाइज कर रहे हैं। इसको अगर आपने अभ्यास कर लिया दो बार भी तो पूरा दिन आपको ये भूलेगा नहीं, ये अभ्यास खींचेगा स्वयं आपको। तो जैसे बाबा की याद से पाप खत्म होते हैं, भस्म होते हैं, ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराने से भी पाप खत्म तो नहीं होते लेकिन हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। और फिर बाबा को याद करना भी सहज होता है। तो इसीलिए यदि या तो हम बाबा को याद करें, यदि बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो स्वदर्शन चक्र फिराएं, जितना जितना इस अभ्यास में खो जाओ, ऐसा नहीं है कि हम कितने देर करें, नहीं, इसका जितना देर अब है ना। दूसरा बाबा ने कहा कि जो सुख का है ना, सुख का राज्य, सुखधाम जो बाबा स्थापन कर रहे हैं, इसमें जाना भी तो हमें है ना। ऐसा नहीं कि हम बना के छोड़ दें और हम जाने योग्य ना हो। सुखधाम की स्थापना में बाबा के सहयोगी बनना है, लेकिन उसके लिए खुद की भी तैयारी हो, है ना। जैसे मान लो आपको किसी को छोड़ने जाना है रेलवे स्टेशन पर चाहे एयरपोर्ट पर कहीं भी, तो आप दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सामान रखवाने में, तो ऐसा तो नहीं कि उनके उनको हेल्प करने में अपना ही छोड़ देंगे। उनको भी हम हेल्प करते हैं, लेकिन साथ ही कोशिश होती है कि अपना भी रखना है। ऐसा नहीं दूसरे को हम तैयार करने में खुद ही रह जाए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो सुखधाम की स्थापना हो रही है, सुख के राज्य की बाबा स्थापना कर रहे हैं, इसके लिए बाबा ने क्या कहा, अपने दिल दर्पण में देखो। अपने दिल दर्पण में क्या देखो कि बाबा ने कहा कि ये देखना है कि मैं बाबा मम्मा जैसी सेवा करता हूं, हमारी एक्टिविटी लक्ष्मी नारायण जैसी है, एक एक कंपेयर, ये चार्ट रखना, ये चेक करना। जब हम बाबा को देखेंगे, साकार बाबा के भी जीवन को देखते हैं कैसा होता है, साकार बाबा, बाबा ने कुछ स्वीकार नहीं किया। इस पर एक एग्जांपल दे दें, अभी किसी ने गुलजार दादी से पूछा कि दादी बाबा से तो साक्षात्कार होता था सबको, लेकिन आप सभी से क्यों नहीं होता है। दादी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। दादी ने कहा कि बाबा ने जीवन में कभी कुछ स्वीकार किया ही नहीं। जो अभी बाबा कमरा है, झोपड़ी है, ये भी उसका मूल स्वरूप नहीं है। उस समय झोपड़ी में पानी आदि सब आता था। तो दादी ने यही कहा कि बाबा ने कुछ स्वीकार ही नहीं किया अपने लिए। क्या कहा, सब किसके लिए है, बच्चों के लिए है। और जब हम स्वीकार करते हैं तो इससे दूर हो जाते हैं, फिर साक्षात्कार नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि बाबा ने अपने संकल्पों का भी, हर एक कर्म का किसके लिए दान दिया, बच्चों के लिए। जो भी है, सब कुछ है, वो बच्चों के लिए है। तो हमें भी ध्यान देना है कि चलो हमारे साथ जो रहते हैं उनको हम देते हैं कि ये तो आपका है, ये तो हमारा है। तो ये कंपेयर करना है कि बाबा मम्मा जैसी हम सेवा करते हैं, तो इसमें खोना, ये कंपेयर करना, इसमें सुख है। आपको सुख की भावना आएगी दिन भर। आप दिन की एक्टिविटी में भी कंपेयर करते हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अगर आप इसको हर एक एक्टिविटी में आप देखते तो मुरली याद रहेगी कि हमें या तो बाबा याद हो, मम्मा याद हो, लक्ष्मी नारायण याद हो, देवी देवताएं याद हो, उनके जैसा हमें बनना है। तो हमेशा हर एक्टिविटी में, हर कर्म में हम याद रखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तुम इस मुरली याद है। केवल ऐसा तो नहीं ना कि हमने दो लाइन सुन लिया, आपको सुना दिया, यही मुरली है, नहीं। हमारे एक्शन से हमको मुरली किसी को सुनाना ना पड़े, लेकिन हमारे एक्शन से दिखाई दे कि मुरली क्या है आज की। तो इतना हमारा अपने ऊपर ध्यान हो। आज बाबा ने एक और भी बहुत अच्छी बात क्लियर की कि सतयुग में राज तिलक कैसे देते हैं, सुना, ध्यान से सुना, कैसे देते हैं राज तिलक, कैसे सत्ता जो कहते हैं ना राजाई सौंपते हैं, जैसे बाप है अपने पुत्र को, अपने बच्चे को कैसे राजाई सौंपता है, कैसे बताया बाबा ने आज। हाँ, कि बाप जो है बच्चों की पांव धुलाई करते हैं, पांव धुलाई करके और गद्दी पर बिठाते हैं, राजगद्दी पर बिठाते हैं। तो सबसे पहले ये काम कौन करते हैं? बाबा। बाबा हम सभी के बुद्धि रूपी पांव को इतना योग्य बना देते हैं जो हम उस सुखधाम में जाते हैं। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रहे कि अगर हमें 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बनना है तो बाबा की एक एक इच्छा, एक एक आवश्यकता, उसमें हमें मदद करनी है। तो एक तो हम पवित्र बन करके और बाबा को याद करके, हम जितना याद करते हैं बाबा को, ये बाबा की मदद है। हर एक को जैसे मदद मिलती है, सृष्टि को भी मदद मिल जाती है। तो बाबा को याद करें, कोई कठिन नहीं है। जो भी आपको अगर कभी मुश्किल लगता तो जो सहज याद है उसी को आप रखिए, बनाए रखिए। सहज याद भी करते करते आपको परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल याद तो यही है कि दो बिंदु आप देखें, दोनों आपस में जुड़े हुए परम धाम में। तो इस अवस्था में, इस स्थिति में जितना देर, जितना समय आप रह सकें, स्वदर्शन चक्र भी फिराएं। ये बाबा ने एक बार डायमंड हॉल में कराया था, हम लोगों को याद है कि फरिश्ता, बाबा ने कहा जैसे फरिश्ता का ड्रेस पहन करके बाबा ने कहा बैठ जाओ, और बाबा ने फिर डायमंड का कुछ पाउडर बनाया, ऐसे छिड़क दिया तो हमारे वस्त्रों में सभी जगह जगह फंस गए और सब जगह चमकने लगे। बाबा ने 10 मिनट के लगभग कराया था और बाबा ने कहा था ये आप भी जब भी दिन में समय मिले 10 मिनट अच्छे फरिश्ता स्वरूप में बैठ जाना और अपने को देखते जाना। तो बाबा ने कहा आप कर्म योगी भी हो, इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसी स्वरूप में चलो। अब जब कर्म करना है तो फिर आपको तो उस स्वरूप में रहना पड़ेगा जो सेवा करनी है, लेकिन ये समय निकाल के बीच में 5 मिनट 2 मिनट फरिश्ता रूप में बैठो। तो यही हो गया आपका स्वदर्शन चक्र फिराना। तो दिन भर में आज हम कंपेयर करेंगे बाबा और मम्मा से, और लक्ष्मी नारायण कैसे हैं, हम कैसे हैं, हमें कैसे चलना है। और बाबा ने आज कहा संगम युग की विशेषता के बारे में कहा, यहां सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हर एक ब्राह्मण के जीवन में, कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, बाबा ने कहा माला का लास्ट दाना भी क्यों ना हो उसका भी क्या है, कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा ने कहा कि जो भी विशेषता है, छोटी सी विशेषता है, कुछ भी है, आप उसको कार्य में लगाओ। तो बाबा ने कहा कि कार्य में जितना लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे लगाते लगाते इन गुणों को यूज करते करते संपन्न बन जाएंगे। और बाबा ने क्या कहा कि मन मनाभाव है ना, मन मनाभाव का जो मंत्र है इसके स्मृति में रहो, इसके स्वरूप में रहो, या मन मनाभाव का मंत्र स्मृति में रहे तो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जब मन को कोई आधार नहीं है तो भटकता है। मन को कुछ सपोर्ट मिल गया तो मन फिर उसी डायरेक्शन में चलता है। ओम शांति।